Hi everyone. So in the previous podcast of mythology, we have discussed about what are the basic structures of mythology and why we should learn it, how we should see it. We can say that we have discussed the overall basic structure and introduction of this mythology thing. So in this podcast of episode 2, we will discuss about something about Bhagavad Gita and something about the wisdoms of Mahabharata and about truth. These three concepts today we will discuss in this podcast. So let's continue. Enjoy the episode. So guys, in this podcast, let's first talk about truth. So for truth, different peoples have different definitions of truth, and everyone has their own point of view regarding this thing, truth. So satya kya hai, what is this truth? Agar hum is cheez ko mythology aur history ke point of view se dekhenge, to ye truth kya cheez hai? Agar 19th aur 18th century ke hum mythology ki baat kare, to jo definition Britishers ne diya tha, these are some fascinated stories and epics which have no significance or no relation with science or with scientific nature. Ye tha mythology jo tab ka definition mythology ka ye tha. Maybe this has changed now a little. तो mythology के introduction के बारे में previous podcast में बोला था कि it's a way of life and everything. So पहले truth की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब हम example लेते हैं कि जैसे कि जो Britishers थे वो हमारे लिए क्या थे? Villain थे, right? आगे लूट के सब ले गए. But for them, for the people of England, for the people of Britain at that time, Britishers were heroes. For them, they were like, bahar ja rahe hain, bahut paisa andar la rahe hain. Right? To hamare liye unki definition alag hai, unke liye hamari definition alag hai. To cheez kya? Cheez ye hai ki truth ka koi basic structure, truth bas ek fact hota hai ki ye ghatna hui thi. Villain कौन था, हीरो कौन था, ये हिस्टोरियन पे डिपेंड करता है. आप जितने भी हिस्ट्री के बुक्स पढ़ ले, माइथोलॉजी के बुक्स पढ़ ले, उन सारे चीज़ों में आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि जो लिखता है उस वो थोड़ा सा किसी चीज़ के ऊपर डाइवर्ट होता है. कि फॉर एग्जांपल कोई महाभारत लिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है पांडव से, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो वो पांडवों की गलतियाँ नहीं लिख रहा है, वो खाली पांडव क्या अच्छे किए थे, कितने अच्छे थे वो लिख रहा है. बट पांडव ने बहुत सारी गलतियां भी की थी, उस चीज़ को वो नहीं लिख रहा. तो उसके हिसाब से पांडव सिर्फ हीरो हैं, उनके अंदर थोड़ी सी भी कोई कटुता या कोई भी ख़राब चीज़ नहीं है, और उनके लिए कौरव पूरे गंदे हैं. दिस इज़ नॉट द एक्चुअल पॉइंट. माइथोलॉजी का ये सिग्निफिकेंस एक्चुअल में नहीं होता है. माइथोलॉजी ये बताने की कोशिश करता है कि उनकी गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं. अच्छाई तो उन्होंने बहुत सारी की, पर उनकी गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, मेनली माइथोलॉजी हमें ये बताने की कोशिश करता है. तो हम वापस से ट्रुथ को आते हैं. तो हम कोई भी एरिया में देख ले, फॉर द मुगल्स, हमारे जो भी महाराणा प्रताप जो भी थे, हमारे सारे शिवाजी, संभाजी महाराज, ये सब उनके लिए क्या थे? उनके लिए विलन थे, और इनके लिए वो विलन थे. तो जब कोई इंडियन ये हिस्ट्री लिख रहा है, तो हमारे लिए तो वो विलन है और ये हीरो है. पर अगर कोई उनका इंसान हिस्ट्री लिख रहा है, तो उसके लिए हम विलन है और वो हीरो है. तो हिस्ट्री को, तो पहले इस पॉडकास्ट के मेन जो हमारा थीम है, थोड़ा सा भगवद गीता और महाभारत, उससे पहले ये हम जान लेते हैं कि हम इस पॉडकास्ट में ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि कौन हीरो था और कौन विलन था। बस इतना ही बात करेंगे कि दोनों की क्या क्या कमियां थी और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, वो हमें, वो जो लिसनर है उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हम बस ये चीज़ को सबसे पहले देखेंगे। तो इसलिए पॉडकास्ट से पहले मैंने आप सबको ट्रुथ की एक कंट्रोवर्शियल भी थोड़ी सी कह सकते हैं आप उस टाइप की जो थ्योरी थी वो मैंने आपको समझा दी। सो नाउ लेट्स डाइव इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ माइथोलॉजी, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स फर्स्ट कम इन टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल महाभारत। तो जो महाभारत है उस चीज़ उसको हम सब कैसे जानते हैं। महाभारत को हम सब जानते हैं कि ये एक माइथोलॉजी है, इसमें पांडव हीरो हैं और कौरव विलन हैं। लास्ट को पांडव इतना धर्म का काम किए हैं, भगवान उनके साथ है, वो जीत जाते हैं। सारे सीरियल, सारे टीवी प्रोग्राम्स सब में यही चीज़ दिखाता है और हम सबका माइंड में भी यही कॉन्सेप्ट फिक्स हो गया है कि पांडव आर सो विक्ट्रियस, सबसे ज़्यादा मेरिट लिस्ट में टॉप आते थे अर्जुन बोल सकते हो ऐसे, तो उस टाइप के कुछ लोग थे। बट हमें ये नहीं दिखाता है, ये दिखाता है, हमें ये महसूस नहीं कराता है कि पांडव उस लेवल तक कैसे पहुँचे, पांडवों के साथ ही भगवान क्यों थे, पांडव ने जो रास्ता चुना उसी को धर्म का रास्ता क्यों बोला जाता है। और सबसे मेन चीज़, पांडवों की गलतियों को कोई भी जगह नहीं दिखाई जाती है, ना ही हमें पता है। दिखाई तो हर जगह जाती है पर हम देख नहीं पाते, उन्हीं स्टोरीज में दिखाई जाती है बस हम नहीं देख पाते। तो बहुत बड़े फेमस माइथोलॉजिस्ट हैं देवदत्त पट्टनायक, उनके एक छोटी सी लाइन मैं आप बोलना चाहूँगा, वो बोलते हैं कि वो जो हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं उससे सीखते हैं, उससे नहीं भी सीखते हैं, एक मोरल होता है। तो ये कहानी, तो महाभारत इस चीज़ को हम एक कहानी के रूप में देखते हैं, रामायण महाभारत जो भी हम पढ़ते हैं, माइथोलॉजी एपिक्स। तो इन कहानियों में ये बोलते हैं कि जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है ये कहानी के निर्गुण में होता है, कहानी के सगुण में नहीं होता। ये क्या कहना चाहते हैं, कहानी के निर्गुण में होता है मतलब जो हीरो है और जो विलन है दोनों के निर्गुण में कहानी का जो मेन मोरल है वो छुपा रहता है। क्योंकि सगुण तो सबको दिखता है, इतना अच्छा है, हैंडसम है, विक्ट्रियस है, इतने बड़े योद्धा है, सब कुछ है, पर हम सीखते कहाँ से हैं, उनके निर्गुण से सीखते हैं, सगुण से नहीं सीख पाते हम। क्योंकि हमारा ब्रेन सगुण को बहुत ही इतना ज़्यादा बड़ा वे में ऐसे देखता है, वो सीख ही नहीं पाता, निर्गुण से सीख पाता है, वो ये कहते हैं। तो महाभारत को आज हम एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। हम नॉर्मली देखेंगे तो महाभारत के एक्चुअल में एक युद्ध नहीं हुआ था, महाभारत में चार युद्ध हुए थे। हम बस एक युद्ध को जानते हैं, वो जो मेन युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में। आज हम चार युद्ध की बात करेंगे। पहली बात तो जो युद्ध है, युद्ध अंतर में होता है, तलवार वाले युद्ध की बात नहीं कर रहा मैं। जो लाइफ के हम सबके लाइफ में युद्ध चल रही है, इस कोविड के एरा में हम सब कोविड से फाइट ही तो कर रहे हैं, तो इनके लाइफ के फेज में जो जो छोटे छोटे युद्ध हुए थे, एक्चुअली छोटे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए थे, वो चार युद्ध में डिवाइड करके हम उसके सिग्निफिकेंस को परखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला ये होता है कि जब पांडव जन्म होते हैं वो जंगल में जन्म होते हैं, जबकि हे वो राजकुमार, और जब वो छोटी उम्र के होते हैं उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। तो जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं तो वो सबसे पहला युद्ध क्या होता है, वो हो जाते हैं ऑर्फन, राइट। सिंगल मदर अपने पांच बेटों के साथ एक जंगल में रह रही है। देखिए हम सब टीवी में देखते हैं कि तब दिखाता है इनके पास कुछ अस्त्र शस्त्र है, ऐसे हवा में मार के पानी पता नहीं क्या क्या होता होगा, पर आप प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कीजिए, सिंगल मदर पांच बच्चों के साथ जंगल में, और वो पांच बच्चे क्या है, अनाथ हो चुके हैं। कहाँ से पैसा लाते होंगे, कहाँ से अपना मतलब खाना क्या मैनेज कर पाते होंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कीजिए, कितना मुश्किल लाइफ हो रहा होगा उनके लिए इतनी इतनी छोटी उम्र में, राइट? ये उनका पहला युद्ध था कि वो अनाथ थे और जंगल में अकेले उनकी मम्मी मतलब उनकी जो मदर है उनके साथ रह के उनको फाइट करना पड़ा था उनके लाइफ के लिए, उनके खाने के लिए। ये सबसे पहला युद्ध था। तो अब हम दूसरी युद्ध की बात करते हैं। तो जब दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो उनके लाइफ का दूसरा फेज आ जाता है कि वो हस्तिनापुर आ जाता है, उनको हस्तिनापुर लाया जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये होते हैं मतलब प्रैक्टिकली ये क्या, ये बहुत भोले होते हैं, पांडव बहुत भोले होते हैं, जंगल से आ रहे हैं, मेहनत की रोटी खाते थे वो वहाँ पे। तो ये आते हैं राजमहल में, तो इनको पता लगता है कि इनके पिता तो इतने बड़े सम्राट थे, तो ये अब आके एक लाविश लाइफ जिएंगे, ये सोच के आते हैं। और इनके सारे कजन्स हैं यहाँ पे, 100 कजन्स हैं, इन उनके साथ घुल मिल के रहेंगे, खुशी में रहेंगे, ये पांडव सोचते हैं। पर जब वो हस्तिनापुर में आते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे उनको कोई पसंद नहीं करता है, सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों आए यहाँ पे, ये हमारा पैसा खाएंगे, बिना मतलब की रोटी खाएंगे, मतलब बिना काम के रोटी खाएंगे। सब लोग उनको एक घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नो वन इज लविंग देम, दे आर नॉट गिविंग दैट लव एंड दे आर नॉट गेटिंग दैट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रॉम देयर कजन्स, दे आर जस्ट गेटिंग हेट। उनके सारे कजन्स उनको हेट करते हैं, उनको उनको नीचा देखते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कौन से गवार आ गए हैं जंगल से, आप समझ रहे हो। और उस टाइम पे उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ना पैसा है, उनके पिताजी का देहांत भी हो चुका है, सिंगल मदर, उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है कि वो उनको राजमहल में रह के वहाँ पे, वो हस्तिनापुर पे डिपेंडेंट है उनके खाने के लिए, उनके लाइफ के लिए, उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ है, ये उनकी दूसरी फाइट है। आप सोच रहे हो एक घर में आप रह रहे हो जबरदस्ती, जहाँ पे आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपको कोई अफेक्शन नहीं दिखाता है, सब लोग सोचते हैं पता नहीं आप क्यों आ गए यहाँ पे, सब लोग आपको नीची नज़र से देख रहे हैं। उस हालत में इतने साल एक जगह पे रहना, ये कितना बड़ा वॉर है आपके दिमाग के अंदर, उन्हीं लोगों से, अपने ही लोगों से, बिना कहे बिना शस्त्र चलाए, ये कितना बड़ा वॉर हो सकता है। हम प्रैक्टिकली आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन को। तो ये उनके लाइफ का दूसरा वॉर होता है। तो सबसे पहला वॉर, वो अनाथ होते हैं, वो फाइट करते हैं अपने खाने के लिए, अपने लाइक जीने के लिए। दूसरा वॉर, उनको कोई प्यार नहीं कर रहा, लव एंड अफेक्शन कुछ नहीं, उनको सब कुछ टॉलरेट करना पड़ रहा है, और वो कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो उन पे डिपेंडेंट है। ये उनके लाइफ का मतलब दूसरा वॉर होता है। तो अब उनकी लाइफ के तीसरे फेज में आ जाता है। तो तीसरे फेज में आने के बाद हमें ये पता लगता है कि जो पांडव हैं वो लाइक दे आर द बेस्ट, वो स्कूल में टॉप हैं, टॉप रैंकर, अर्जुन मेरिट लिस्ट में ऑल इंडियन AI1 है अर्जुन, ऑल इंडिया रैंक 1। तो वो उस लेवल के योद्धा बन चुके हैं, विक्ट्रियस वॉरियर्स, बहुत खतरनाक। तो ये भी एक आप छोटी सी युद्ध के बारे में ले सकते, मतलब टाइप का ले सकते हैं कि वो जो गुरुकुल में रहते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि वो दुनिया के सबसे विक्ट्रियस वॉरियर है, राइट? तो ये सब कुछ होता है। तो फिर तीसरा वॉर होता है जेलसी, किससे, वही अपने ही कजन से, अपने खून से जेलसी होता है, क्योंकि उनके जो कजन्स हैं उनको लगता है कि ये तो हमसे ज़्यादा विक्ट्रियस है, तो ये अब हमारा जो राज्य है उसको कैप्चर कर लेंगे। तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो वो होता हो जाते हैं जलस। तो ये होती है इनकी तीसरी वॉर, कि अपनों से ही जलसी के लिए उनको मन में ही मन फाइट करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है अपने ही फैमिली के अंदर। तीसरी वॉर होती है जेलसी वाली वॉर। तो हमने पहले वॉर की बात की, वो अनाथ थे। दूसरे वॉर की बात की, वो डिपेंडेंट थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तीसरे वॉर की बात की, वो जेलसी का शिकार होना पड़ा उन्हें। चौथे वॉर की बात करेंगे, तो जो चौथे वॉर की बात करेंगे उसमें वो उनके लाइफ का फोर्थ फेज होता है। तो उनके लाइफ में के फोर्थ फेज में क्या हो जाता है कि उनका घर जला दिया जाता है। नॉर्मली ले रहे हैं कि कोई आपसे जलस है, वो आपको सह नहीं पा रहे, वो आया आपका घर जला दिया, आप किसी तरह बच के निकले और जंगल में चले गए। आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप जंगल में चले गए। जंगल में पशु पक्षी जो भी आदिवासी लोग हैं उन सब के ऊपर आप फिर से डिपेंडेंट हैं। तो आप क्या बन गए? आप बन गए रिफ्यूजी। आप यहाँ पे रिफ्यूजी बन गए। तो ये फोर्थ वर है उनकी लाइफ का कि वो रिफ्यूजी बन जाते हैं। आप सोच रहे हो राजकुमार सबसे विक्टोरियस वॉरियर से रिफ्यूजी तक की जर्नी, मतलब उन्होंने सबसे हाइट्स भी देखा, सबसे लोएस्ट मोमेंट भी देख चुके हैं वो अब उनके लाइफ में इतनी छोटे स्पैन ऑफ टाइम में। तो ये होती है उनकी फोर्थ वॉर। तो ये फोर्थ वॉर जो रिफ्यूजी वाली वॉर होती है, इसके बाद वो क्या करते हैं, इसके बाद उनकी कोई मदद करता है, फिर वो शादी करते हैं, फिर उनको वो खांडव प्रस्थ मिलता है, फिर वो फिर से राजा बन जाते हैं, फिर उनके पास सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं, लेकिन फिर वो जुआ में हार के वापस जंगल चले जाते हैं। तो फिर अगेन वो रिफ्यूजी बन जा रहे हैं। तो ये जो फोर्थ वॉर है उनकी लाइफ का, वो यही है कि वो जंगल में रिफ्यूजी है, उनके पास कुछ नहीं है। एक बार उनका घर जला दिया गया, वो जंगल में फंस गए, वापस से उनको निकाला गया, जुआ में हार गए, वो वापस जंगल में फंस गए। तो ये पांडवों के लाइफ के चार वॉर्स हैं। अब हम सब जिन पांडवों को देखते हैं कि वो इतने विक्ट्रियस हैं, भगवान उनके साथ थे, धर्म उनके साथ था, ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा टॉलरेट किया है, पूरी लाइफ उन्होंने वॉर लड़ी है, अगर शस्त्र से नहीं तो अपने आप से, अपने ही परिवारजनों से। तो एक्चुअली में माइथोलॉजी इसी तरह पढ़ा जाता है। माइथोलॉजी आपको यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई, कि कैसे आप एक हीरो को देख रहे हैं, राइट? वो हीरो उस लेवल तक कैसे पहुंचा, वो पूरी जर्नी, और उस जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दी पांडव, मैंने महाभारत की शॉर्ट स्टोरी क्या क्या हो सकती है मैंने आपको बता दी। अब महाभारत के एक दूसरे एक दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, कर्ण और कृष्ण। कर्ण और कृष्ण दोनों में क्या अंतर है और दोनों के सिचुएशंस कैसे समान है, उस चीज़ के बारे में लेट्स टॉक अबाउट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कृष्ण एंड कर्ण। पहले कर्ण की थोड़ी बात कर लेते हैं। कर्ण कौन होते हैं? कर्ण होते हैं अंडरडॉग। अंडरडॉग क्या होता है? वो हीरो होता है, किसी कोई उसको पहचानता नहीं, अचानक नीचे से आता है और सब कुछ उखाड़ लेता है एंड ऑल। सो कर्ण की बात करते हैं। कर्ण के लाइफ को देखेंगे तो पहली बात, वो चैरियट जो चलाते थे उनके बेटे थे, सूत पुत्र थे, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो वो ड्राइवर के बेटे थे, राइट? तो कर्ण की लाइफ को देखते हैं, उनके पिताजी कहते हैं कि तू भी मेरी तरह ड्राइवर हो जा और पैसे कमा, घर चला। पर वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ड्राइवर नहीं बनना, मुझे स्कूल जाना है, मुझे IAS बनना है। आप प्रेजेंट डे से कंपेयर कर सकते हैं। वो ये बोलते हैं कि मुझे ड्राइवर नहीं बनना, मुझे स्कूल जाना है और IAS बनते हैं। तो पिताजी बोलते हैं कि जो स्कूल है वो हायर कास्ट लोगों के लिए है, वो राजकुमारों के लिए है, तेरे लिए नहीं है, तो स्कूल नहीं जा सकता, ये पिताजी बोलते हैं। तो फिर उनको वो चीज़ हर्ट करता है कि क्यों मैं नहीं, राइट? तो वो, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट था, उनके अंदर वो आर्चरी का पहले से टैलेंट था, गॉड्स गिफ्ट, तो उन्होंने वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपना पैशन ही फॉलो करूँगा, मुझे ड्राइवर नहीं बनना है, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो झूठ मूठ बोल के जो भी करके वो अपनी स्कूल ख़त्म करते हैं और वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर बन जाते हैं। तो उसके बाद वो ग्रेटेस्ट वॉरियर बन जाते हैं, उनको दुर्योधन वो सम्मान देते हैं कि भाई तू जा और राजा बन जा। तो सब कुछ उनको मिलता है, पर उनको एक चीज़ नहीं मिलती, वो होती है रिस्पेक्ट। उनको जो भी देखता है वो बोलता है कि कुछ भी किया हो है तो वो ड्राइवर का बेटा ही। लाइक उनको उनको सब नीचा नीचे देख रहे हैं कि तू ड्राइवर का बेटा है, तू वहीं रहेगा एंड ऑल। वो पोर वाले कैटेगरी में देख रहे हैं, तू इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, तू जितना कुछ भी हासिल कर ले तेरा जीन तो वही है ना। तो वो उस चीज़ को बार बार लोग उसको रियलाइज़ करवा रहे हैं। तो उस टाइम पे जब कोई इंसान आता है और उनको बोलता है कि आ भाई मैं तुझे सीधा राजा बना रहा हूँ, तो वो अपनी पूरी लाइफ उस इंसान को डेडिकेट कर देते हैं। और उस इंसान की गलती हो सही हो जो भी हो वो सपोर्ट करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो ये कर्ण की स्टोरी है। तो वो ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि कर्ण को वो अशेम्ड हैं, उनको दूसरे जो बोलते हैं उससे वो अशेम्ड हैं। आप सेम कृष्ण की स्टोरी ले लो, कर्ण को कर्ण जन्म हुए उसको वो अनाथ हो गए थे, बाद में उनको किसी ने अडॉप्ट किया। सेम विद कृष्ण, जन्म हुए वो जाके उनको किसी और ने अडॉप्ट कर लिया। बचपन से कृष्ण को सब लोग ग्वाला ग्वाला बोलते थे, वो गाय चराने जाते थे, उनको कोई बंशी वादक कोई कुछ भी एनीथिंग। तो फिर वो जब कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के जाते हैं मथुरा, तो वहाँ पे वो होते हैं एक्चुअली एक रिसलर, बट वहाँ पे उनको सब बोलते हैं कि तू ग्वाला है, तू छोटे जाति का है, तू आप समझ पा रहे हैं ना। वो कर्ण को जैसे नीचा दिखाया जाता है वैसे कृष्ण को दिखाया जाता है, लेकिन जब कर्ण को नीचा दिखाया जाता है तो कर्ण क्या करते हैं, वो गुस्सा हो जाता है, वो रिस्पेक्ट मांगते हैं, वो रिस्पेक्ट के लिए भीख मांगते हैं। दुर्योधन जब उनको रिस्पेक्ट देता है तो उनको अपनी पूरी लाइफ उनको डेडिकेट करनी पड़ती है। पर एट द सेम थिंग कृष्ण क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है अगर तुम मुझे ग्वाला बोल रहे हैं, मैं हूँ ग्वाला, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खुश हूँ, मैं ग्वाला हूँ और खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो वो उनकी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो उसे अशेम्ड नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो कृष्ण को वो रेस्पेक्ट गेन कर रहे हैं, कर्ण रेस्पेक्ट मांग रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। कर्ण रेस्पेक्ट मांग रहे हैं, कृष्ण रेस्पेक्ट गेन कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है। कर्ण हमेशा बोल रहे हैं कि मुझे बड़ा योद्धा बनना है, कर्ण के अंदर क्या है, कर्ण के अंदर ईगो है कि मुझे सबसे बड़ा बनना है। उनकी पूरी लाइफ किस चीज़ में चली गई, मुझे अर्जुन को हराना है, इसी चीज़ में उनकी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई कि मुझे साबित करना है मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर हूँ। तो ये ईगो है कर्ण का। पर कृष्ण क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ किसी को साबित नहीं करना है, जबकि कर्ण बोलते हैं कि मैं अर्जुन से फाइट करके युद्ध में जीतूंगा, कृष्ण बोलते हैं मैं अर्जुन का ड्राइवर बन जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, तब भी मैं भगवान ही रहूंगा, अगर भी मैं ड्राइवर बन गया तो भी मैं भगवान ही रहूंगा। ये है दोनों में अंतर, कर्ण में ईगो होता है, कृष्ण में विजडम होता है। यहाँ पे कोई भगवान कोई दानव कोई कुछ नहीं, दोनों इंसान है। कर्ण के अगर कर्ण के अंदर अगर ईगो है, कृष्ण के अंदर विजडम है, दोनों के एटीट्यूड में इतना ही फर्क है। तो हमने माइथोलॉजी में महाभारत बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, तो अब हमारे लास्ट फेज ऑफ पॉडकास्ट में हम थोड़ी सी भगवद गीता के दो तीन वर्ड्स के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो भगवद गीता के दो तीन वर्ड्स की बात करेंगे हम। तो देखिए भगवद गीता जो चीज़ है, बहुत लोग बोलते हैं वो रिलीजियस है, बहुत लोग बोलते हैं कि वो वे ऑफ लाइफ है, बहुत लोग बोलते हैं वो फिलोसॉफी वाला बुक है, वो मोटिवेशनल बुक है। सारे लोगों के अपने अपने डिबेट पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, एक रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, हिंदुज़म, मुस्लिम, इस्लाम, सिख, एनिज्म, एनी रिलीजन, उन सब का एक बेसिक वे होता है, एक कॉमन एम होता है, हैप्पीनेस। सारे रिलीजियस बुक्स, भगवद गीता, कुरान, बाइबल, एनीथिंग, और सारे रिलीजन्स, लाइक भगवद गीता क्या कहता है, वो कहता है कि द बेसिक कॉन्सेप्ट और एम ऑफ एनी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी इज हेल्पिंग अ पर्सन अंडरस्टैंड देयर जर्नी ऑफ सोल इन लाइफ एंड बियॉन्ड लाइफ। इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है कि आपके अंदर को समझना, आपके अंदर को प्यूरिफाई करना, यू कैन से दैट माइंड एक्सरसाइज टाइप समथिंग। सारे रिलीजन्स और स्पिरिचुअलिटी का यही मोटो है, यही एम है। भगवद गीता भी यही कहता है। सब चीज़ का मेन एम हैप्पीनेस है, जस्ट प्योर हैप्पीनेस एंड ब्लिस। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो प्योर मॉन्क्स होते हैं वो हमेशा उनके चेहरे पर खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने एक सर्टन विजडम को हासिल कर लिया है। इसलिए भगवद गीता में एक कॉन्सेप्ट है, मतलब आप बोल सकते हैं हम रिलेशन की बात करते हैं, लाइक बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन टू जेंडर्स और एनीथिंग, दो रिलेशन की बात करते हैं, तो भगवद गीता में एक सस्टेनेबल रिलेशन विथ एनीवन इन योर लाइफ, विथ एनीवन सस्टेनेबल रिलेशन, उन चीज उसके लिए भगवद गीता में चार पॉइंट्स बोला जाता है। वो होता है इंटीग्रिटी, सर्विस एटीट्यूड, टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी। भगवद गीता में ये चार चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आप किसी के साथ, किसी के भी साथ एक कंप्लीट रिलेशन, लाइक एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो किसी के भी साथ, योर फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स, एनीवन, तो ये चार चीज़ें ये मेन होती है अकॉर्डिंग टू द भागवतम। द इंटीग्रल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल रिलेशन। और एक बहुत कमाल की कॉन्सेप्ट है भगवद गीता में, वो है ट्रीज का कॉन्सेप्ट। ट्रीज, हम सब लोग पेड़ की पूजा करते हैं, राइट? भारत में हमारे यहाँ पेड़ की पूजा की जाती है, सेव नेचर, सेव लाइफ। हम जब नेचर को देखते हैं हम नॉर्मल देखते हैं, पर जब कृष्ण नेचर को देखते हैं, जब कृष्ण ट्रीज को देखते हैं, वो भगवद गीता में बोलते हैं, वो नॉर्मली नहीं देखते हमारी तरह, वो उसके अंदर एक अलग सी लाइट देखते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि बिकम मोर टॉलरेंट लाइक अ ट्री। एक ट्री क्या होता है? एक ट्री वो होता है हु इज रेडी टू गिव ऑल द रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न, द मोस्ट सेल्फलेस एटीट्यूड। ये होता है एक ट्री का एटीट्यूड। अब खुद कभी ऑब्जर्व कीजिए नेचर को, ट्रीज को, अर्थ को, ये सब वही करता है, ये सब वही सिखाते हैं मैनकाइंड को। अब ट्रीज को देख लो, सबसे कमाल के बाद ट्रीज के टॉलरेंस, वो हीट, रेन, साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, एवरीथिंग, दे टॉलरेट एवरीथिंग, बट देन ऑल्सो दे ट्राई टू सेव अदर पीपल, दे ट्राई टू सर्व अदर पीपल। आप समझें कि नहीं, द लाइफ ऑफ ट्रीज इज टोटली डेडिकेटेड टू सर्व अदर पीपल, डिस्पाइट बींग लाइक वो सारी चीज़ों से टकराते हैं, सारे मुश्किलों से गुजरते हैं, बट देयर सोल एम इज दिस। तो यही वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, ट्रीज, नेचर, यही सिखाने की कोशिश करते हैं हम सब। सो आज के लिए इतना ही, हमने जिन थ्री टॉपिक्स की बात की थी, सो आई थिंक कि हमने सारे तीनों टॉपिक्स को कवर कर लिया है। नाउ वी विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस पॉडकास्ट एंड ग्रैब सम नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक्स। And for the viewers, the Asterix merch is now available on asterixstudy.com. Go ahead and shop your favorite merchandise and licensed merchandise of favorite movies and TV shows. Thank you for today.